हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 13वां अध्याय श्लोक संख्या 46, 47, 48, 49 and 50। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती युत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस् तद्धाम वृन्दावनम्, रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गीनया कल्पिता। श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममलम् प्रेम पुमर्थो महम् श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदम् तत्ताग्रहो न परः। करारिविन्दे न पदारिविन्दम् मुखारिविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारि, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वेऽपि बस्व मृतुमेतदेव गोविन्द दामो धर्माधवेति। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीताम्बरधरुणबिम्बपदधरुष्ठा पूर्णेन्द्रसुन्दर
मुखात अरविंद नेत्रात्तरं किमपि तत्व अहं न जाने जीवसंतं नवनीतचोरं गोपांगनानां चदुकूलचोरं श्रीराधिकाय हृदयस्य चोरम् चोराय गण्यं पुरुषं नमामि श्रीकृष्णश्यामं मनसा स्मरामि मूकं कुरुतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयति किरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। ग्रंथ राज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद 13वां अध्याय जिसका शीर्षक है धृतराष्ट्र का गृह त्याग। तो जैसे ही धृतराष्ट्र विदुर जी के साथ गृह त्याग करके चले गए, युधिष्ठिर महाराज शोक से आकुल हो गए और उनके शोक का क्षमन करने के लिए वहां पर अकस्मात नारद मुनि आए हैं और नारद मुनि विदुर जी को, युधिष्ठिर महाराज को यह शिक्षा दे रहे हैं कि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए। पहले बोला दूसरों के लिए शोक मत करो ये, और आगे क्योंकि कल बोला कथम त्वनाथा कृपणा वर्तेरंस्ते च माम बिना, तुम ये कैसे सोच सकते हो कि वो तुम्हारे बगैर कैसे जिएंगे। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे बिना कोई कार्य कैसे होगा। आज तुम हो कल नहीं हो, तो क्या समझते हो कि संसार के सारे लोग भूखे मरेंगे, और क्या खाना सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो तुम्हारे महल में रहते हैं, बाकी पूरी प्रकृति भूखी सोती है। तो यहाँ पर नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि इस संसार में भगवान सबका प्रबंध करता है, आपको किसी के लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप भला किसी को क्या सुरक्षा प्रदान करोगे, क्योंकि आपका जो ये देह है वो स्वयं आगे कहते हैं श्लोक नंबर 46 में, काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पांच भौतिक कथम मन्यास्तु गोपाये सर्पग्रस्तो यथा परम काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पांच भौतिक कथम मन्यास्तु गोपाये सर्पग्रस्ते यथा परम। ये जो आपका देह है वो स्वयं तीन चीजों के द्वारा अधीन है, उनके नियंत्रण में है, उनके कंट्रोल में है। क्या क्या है? काल कर्म गुण अधीन। ये तुम्हारा भौतिक शरीर है, देहोयम पांच भौतिकम। एक तो ये भौतिक शरीर जो है वो पंचभूतों से बना हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, वो सभी क्षणिक हैं, क्षय हो जाने वाले हैं। और ये तुम्हारा जो शरीर है वो काल कर्म और गुणों के अधीन है। मतलब काल यानी समय, वो समय हर क्षण बढ़ रहा है और तुम्हारे शरीर की अवधि घट रही है। एक एक सेकंड में तुम्हारा शरीर क्षय को प्राप्त हो रहा है, उसकी अवधि कम हो रही है, और उसके साथ कर्म, ये जो तुम्हारे कर्म होते हैं उसी के कारण तुम्हें आज सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है। और जब तक तुम्हारे पास कर्मों का स्टॉक है, तभी तक तुम इस भौतिक जगत में रहोगे। यानी काल का मतलब क्या है कि जन्म हुआ काल, काल के समय कोई ना कोई ऐसा काल होता है जिसमें हमारा जन्म होता है, और कोई ना कोई ऐसा काल आता है पहले से निर्धारित है जिसमें हमारी मृत्यु होगी। मृत्यु के अधीन है जीव, कर्म के अधीन है, क्योंकि अगर हमारे अच्छे कर्म है उसी के अनुसार आज हमें कुछ अच्छा मिल रहा है, और जैसे ही कर्मों का स्टॉक खत्म हो जाएगा तो यहाँ संसार में हमारा रहना बंद हो जाएगा, हम लोगों को यहाँ संसार में रहने नहीं दिया जाएगा। और दूसरा गुण, और ये जो तीन गुण है उनके कंट्रोल में है ये जीव। तो यानी ये जो है काल कर्म और गुणों के अधीन है, और एक दिन डिस्ट्रॉय होना है। ये तुम्हारा शरीर जो है वो स्वयं समाप्त हो रहा है, समाप्ति की ओर जा रहा होता है, इस पर अपना कोई बस नहीं है, है ना। हम काल पर कोई बस नहीं हमारा, कर्म के ऊपर, गुणों के ऊपर। तो जो स्वयं दूसरे के बस में है वो भला दूसरों का पालन क्या करेगा। तो यहाँ पर क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने कहा था कथम तो अनाथ कृपणा, वो भी सारे अनाथ हैं, कृपण हैं, तो वर्तेस्ते च माम बिना, वो किस तरह से मेरे बगैर जी सकेंगे। तो नारद मुनि उसे समझा रहे हैं कि आप क्या समझ रहे हो कि अब तक वो आपके द्वारा सुरक्षित थे। अरे आप तो स्वयं ही काल कर्म और गुणों के अधीन हो, तो कथम अन्यस्तु गोपाये, तो आप स्वयं भी यदि अधीन हो तो दूसरों को भला कैसे गोपायत मतलब सुरक्षा प्रदान कर सकते हो, और किस प्रकार से आप अधीन हो जानते हो आप। यहाँ पर बहुत ही सुंदर उपमा दी है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, सर्पग्रस्तो यथा परम। ये उदाहरण है कि जैसे किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा अजगर जो होता है वो ग्रस्त कर लेता है। अजगर जो होता है वो पूरा निगलता है, एक कोई व्यक्ति होता है उसको पूरा निगलता है। अब एक व्यक्ति जिसको स्वयं अजगर ने जकड़ा हुआ है वो भला किसी को क्या सुरक्षा प्रदान करेगा। और दूसरी बात ये कि एक फैमिली में समझो 10 लोग रह रहे हैं और 10 लोगों को ही अजगर ने जकड़ा हुआ है, यानी कि 10 लोग ही काल क्रम और गुणों के अधीन हैं, तो वो स्वयं ही अजगर के द्वारा सर्पग्रस्तो यथा परम, तो वो स्वयं भी यदि जकड़े हुए हैं तो दूसरों की मदद कैसे करेंगे। और मदद भी वो लोग करने का दावा करते हैं जिनको अजगर ने ज्यादा पकड़ा है। मतलब एक जैसे मानो छोटा बच्चा है वो 10 साल का है तो अभी तक काल उसको पूरा नहीं जकड़ा, पूरा खाया नहीं है, सिर्फ पांव से थोड़ा पकड़ा है। अभी 10 साल तक ही तो उसने जिया है, उम्र बहुत पड़ी हुई है, कर्मों का बैलेंस भी अभी बहुत है। लेकिन जो 50 साल का है उनका तो गर्दन तक अजगर पूरा ग्राहक करके गया है, गर्दन तक उसको पकड़ा हुआ है, और वो सोचते हैं कि मैं रक्षक हूँ, मैं पालक हूँ, मैं सुरक्षा प्रदान करूंगा। वास्तव में ये मूर्खता है। हम जैसे जैसे अपने जीवन की अवधि को पूरा करते हैं वैसे वैसे काल के गाल में जा रहे हैं। दूसरों को भला क्या बचाएंगे, अपने को तो बचाएं। अभी जैसे जैसे जीव बड़ा होता जाएगा, बीमार हो जाएगा, मरने वाला होगा, फिर भी अगर उनसे पूछें हाउ आर यू तो बोलेंगे आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। वास्तव में ये जगत दुखालय है, यहाँ पर कोई ठीक नहीं है। अगर इस संसार में हमारे मुख से भगवान का पवित्र नाम निकल रहा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यदि हम संख्या पूर्वक नाम गाने, यदि हम अपना नाम जब पूरा कर रहे हैं, यदि हम भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो बस यही फाइन स्थिति है इस संसार में। अगर हम भगवान की कथा को नहीं श्रवण कर रहे हैं, यदि हम भगवान के पवित्र नाम का जप नहीं कर रहे हैं, तो फिर इस जगत में सुख मिलना असंभव है। है नहीं सुख तो मिलेगा कहाँ से। भगवान के पवित्र नाम और भगवान की कथाओं के अतिरिक्त अगर कोई कह रहा है कि मैं फाइन हूँ, मैं सुखी हूँ, तो वो केवल स्वयं को धोखा दे रहा है। इस जगत में सबकी स्थिति बहुत दुखित है, काल अजगर की तरह धीरे धीरे सबको निगल रहा है। जैसे रोज कैलेंडर मतलब हर महीना कितना जल्दी गुजरता है, और कैलेंडर का एक पन्ना उल्टा दिया जाता है, मतलब एक महीना काल ने खा लिया, और फिर ऐसा आता है कल दिन पूरे हो जाते हैं और कैलेंडर चेंज करना पड़ता है, एक साल आपके जीवन का और कम हो गया और हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं हैप्पी न्यू ईयर, ये नहीं जानते कि एक और ईयर काल ने हमारा खा लिया है। अनुवाद देखिए, 5 तत्वों से निर्मित यह स्थूल भौतिक शरीर पहले से ही काल, कर्म तथा प्रकृति के गुणों के अधीन है, तो यह किसी तरह अन्यों की रक्षा कर सकता है जबकि यह स्वयं सर्प के मुंह में पड़ा हुआ है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रचार द्वारा विश्व आंदोलनों से किसी को कोई लाभ होने वाला नहीं है। भौतिक जगत में बहुत सारे प्राचारिक हैं, है ना, जो राजनीतिक है ना, पॉलिटिक्स हैं, आर्थिक सामाजिक जो सब हमें बताते हैं, परंतु श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं वो वास्तविक लाभ प्रदान नहीं कर सकते क्योंकि वे श्रेष्ठ शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं, वो भी काल, कर्म और गुणों के द्वारा अधीन होते हैं। बद्ध जीव पूरी तरह से प्रकृति के वश में होता है जो काल तथा कर्म द्वारा अपने विभिन्न गुणों के आदेश पर चलता है। और प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। सत्वगुणी हुए बिना मनुष्य वस्तुओं को असली रूप में नहीं देख पाता। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति वस्तुओं को उनके असली रूप में कभी नहीं देख पाता, अतएव रजोगुणी तथा तमोगुणी व्यक्ति अपने कार्यों को सही दिशा में नहीं दे पाते। केवल सत्वगुणी व्यक्ति ही कुछ हद तक ऐसा कर सकते हैं, चूंकि अधिकांश व्यक्ति राजसी तथा तामसी होते हैं, अतएव उनकी योजनाएं तथा परियोजनाएं शायद ही अन्यों को कुछ लाभ पहुंचा सकते हैं। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी प्रकृति के 3 गुणों के विषय में बताते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने पूरे 2 चैप्टर दिए, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 17, जिनमें भगवान ने प्रकृति के गुणों के विषय में बहुत ही विस्तार से बताया है। और यहाँ श्रील प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि जब तक कोई व्यक्ति रजोगुण में होता है या तमोगुण में होता है, वो कभी भी किसी जीव का लाभ नहीं कर सकता, और सत्वगुणी व्यक्ति भी कुछ हद तक किसी को लाभ प्रदान कर सकता है। और यहाँ पर इस संसार में यदि देखा जाए तो जितने भी राजनीतिक हैं, पॉलिटिक्स हैं, आर्थिक हैं, सामाजिक हैं, संस्कृति को प्रचार करने वाले, वो सब रजोगुण और तमोगुण के असर में हैं। तो वो भला कैसे योजनाएं बना सकेंगे जिससे किसी जीव का कल्याण हो सके। और प्रकृति के गुणों के ऊपर भी शाश्वत समय है जो काल कहलाता है, क्योंकि यह जगत की हर वस्तु की आकृति को बदल देता है। यदि हम अस्थाई रूप में कोई लाभप्रद कार्य कर भी लें, तो समय बीतने पर काल द्वारा यह अच्छी प्रयोजना विनष्ट हो जाती है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताएं कि समय बहुत पहलवान है। यदि हम कोई अच्छा काम, अच्छी योजना बना भी लेते हैं, जैसे आज अगर हम देखें तो कितना ये जो हमारे कंट्रीज का जो हाल है वो कितना बुरा है, लेकिन इससे पहले बहुत सारे राजा आए होंगे जिन्होंने बहुत अच्छी योजनाएं बनाई होंगी, लेकिन समय के बीतने पर वो सारी योजनाएं समाप्त हो जाती हैं। तो यदि कुछ किया जा सकता है तो इतना ही कि हम काल से छुटकारा पा लिया जाए, जिसकी तुलना काल सर्प से की गई है। इसका दंश सदैव जानलेवा होता है, कोई भी व्यक्ति सर्प दंश से नहीं बच पाता, अतएव काल सर्प अथवा प्रकृति के गुणों के चुंगल से बचने का सर्वश्रेष्ठ उपाय भक्ति योग है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस संसार में प्लानिंग्स करने के, इस तरह से सुखी हो जाएंगे, इस तरह से सुखी हो जाएंगे, वो सारी प्लानिंग्स तुम्हारी एक दिन फेल हो जाएंगी। तो यदि तुम इस काल के डंक से, जो सर्प की तरह तुम्हें खाए जा रहा है, अगर उसके सर्प के विषैले दांतों से बचना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है और वो है भक्ति योग, जिसकी संस्तुति श्रीमद् भगवद गीता 14.26 में की गई है, जिसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समती तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। माम च यो अव्यभिचारेण, यानी जो बिना विचलित हुए मेरी भक्ति योगेन सेवते, मेरी भक्ति करता है, भक्ति के साथ
प्रेम के साथ मेरी सेवा करता है। सगुणान समतीत तैतान, भगवान कहते सिर्फ वही इन गुणों से अतीत हो सकता है, इनको लांग सकता है। एतान ये सारे गुण को कंट्रोल कर सकता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, और ब्रह्म पद तक ऊपर उठ सकता है। मतलब यदि हमें काल और कर्म के चुंगल से सर्प से बाहर निकलना है तो उसका केवल एक ही तरीका है, भगवान की भक्ति करना। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं सबसे पूर्ण लोकोपयोगी परियोजना यह है कि हर व्यक्ति को विश्व भर में भक्ति योग के प्रचार कार्य में लगाया जाए, क्योंकि उसी के द्वारा लोगों को काल कर्म तथा गुण द्वारा व्यक्त माया के वश से बचाया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता 14.26 से इसकी पुष्टि होती है। श्री प्रभुपाद जी हमें बहुत सुंदर यहाँ पर बात बता रहे हैं कि यदि आप काल कर्म और गुणों के वश से बचना चाहते हो तो उसका उपाय भगवान ने 14.26 में बताया हुआ है। यदि हर कोई व्यक्ति अगर चाहता है किसी जीव का कल्याण करे तो उसको चाहिए कि वो भगवान की भक्ति का प्रचार करे, भगवान के शब्दों का प्रचार करे। भगवान, और जब जीव भगवान की भक्ति करता है, भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, तो वो इस माया से काल कर्म और गुणों के इस चुंगल से बच सकता है। कैसे? माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। केवल भगवान कहते सिर्फ और सिर्फ मेरी भक्ति योग यदि आप स्वीकार करते हो, सगुणान समतीत तैतान, और तभी तुम इन समस्त गुणों से अतीत हो सकते हो। और कहाँ तक जाओगे? ब्रह्म भूयाय कल्पते, और ब्रह्मभूत स्थिति को प्राप्त करोगे, जहाँ पर न शोक जीना कांसति, जहाँ पर न दुख है और न ही चिंता है। तो जब तक इस संसार में हम लोग रहेंगे तो दुखों और चिंताओं से ग्रस्त रहेंगे, और यदि दुखों और चिंताओं से बचना है तो उसका एकमात्र तरीका है भगवान के पवित्र नाम का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, और भगवान के पवित्र शब्दों का श्रवण करना। आगे नारद मुनि कहते हैं अहस्तानी सहस्तानाम अपदानी चतुष्पदाम फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदाम फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। अहस्तानी मतलब जिसके हाथ नहीं है, सहस्ताना वो हाथ वालों का भोजन है। वो कैसे हैं? जिनके हाथ नहीं है वे भोजन है जिनके हाथ हैं, जैसे सिंह। अब सिंह के जो दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, असल में तो उसके भी चार पांव होते हैं, लेकिन जो आगे वाले दो पैर होते हैं वो हाथ का काम करते हैं। वो पकड़ता है किसी जीव को, हिरण को इत्यादि, उन हाथों से और खींच खींच कर उसको खाता है। मतलब वो हाथ का काम करते हैं। तो जो यहाँ पर कह रहे हैं नारद मुनि, बता रहे हैं कि ये भगवान का नियम है, अहस्तानी सहस्ताना, जिनके हाथ नहीं है वो हाथ वालों का भोजन है, और अपदानी चतुष्पदाम, जिनके पांव नहीं है चतुष्पदाम, वो चार पैर वालों के भोजन है। चार पैर वालों के कौन से होते हैं? चार पैर वाले गाय भैंस बैल वगैरह, इनके चार पैर होते हैं। अब चार पैर होते हैं तो इसका मतलब है इनके जो दो आगे वाले हाथ होते हैं ना, पैर होते हैं ना, वो हाथों का काम नहीं करते, वो सिर्फ उनसे चलने का काम कर सकते, पकड़ने का काम नहीं कर सकते, खुर बना होता ना। तो जो यहाँ पर कह रहे हैं अपदानी चतुष्पदाम, जिनके पैर नहीं है वो चार पैर वालों के भोजन है। अब पैर किसके नहीं है? जैसे वृक्ष हैं, घास है, ये भाग नहीं सकते, उनके पैर नहीं है ना, क्योंकि वो तो एक ही जगह पर होते हैं, होते जीवित हैं मगर चल नहीं सकते, इसलिए उसको अपदानी कहा गया है कि वृक्ष और इत्यादि ये अपदानी है, तो चतुष्पदाम यानी गाय इत्यादि के भोजन है। और आगे कहा फल्गुनी तत्र महता, जो छोटे छोटे हैं वो बड़ों के भोजन है। जैसे छोटे फल्गुनी का मतलब होता है छोटे मासूम निर्बल जो होते हैं, जैसे छोटी मछलियां होती हैं वो बड़ी मछलियां खाती हैं और छोटे छोटे सर्पों को बड़े सांप खाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं जीवो जीवत से जीवनम। तो ईश्वर ने इस तरह से सबके लिए व्यवस्था की है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि वो गए हैं तो क्या खाएंगे। जो जीव जहां पर रहता है उसको उस जगह पर भोजन की व्यवस्था प्राप्त हो जाती है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अनुवाद देखिए, जो बिना हाथ वाले हैं वे हाथ वालों के शिकार हैं, जो पांव से विहीन है वो चौपाइयों के शिकार हैं, निर्बल सबल का भोजन है। और यह सामान्य नियम है कि एक जीव दूसरे का भोजन बन जाता है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जीवन संघर्ष में जीवन निर्वाह का नियम भगवान की परम इच्छा से है और किसी भी योजना के द्वारा इससे छुटकारा नहीं मिल सकता। जो जीव इस संसार में परम पुरुष की इच्छा से विपरीत आए हैं वे माया शक्ति के अधीन रहते हैं जो भगवान द्वारा नियुक्त होती है। यह दैवी माया बद्ध जीवों को तीन प्रकार के तापों से सताती है जिनमें से एक की व्यवस्था इस श्लोक में बताई गई है। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि जीव भले ही भगवान पुरुष जो है वो परम पुरुष की इच्छा के विपरीत इस संसार में आया है, परंतु कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ पर आके वो स्वतंत्र है, वो माया शक्ति के अधीन है। क्योंकि अगर जीव भगवान की अधीनता स्वीकार नहीं करता तो माया उसे अपने संरक्षण में लेती है। तो ये माया भगवान की होती है, यह दैवी माया भद्र जीव को बहुत सताती है तीन प्रकार से, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। तो यहाँ पर श्री रूपा जी कहते हैं इनमें से एक की व्यवस्था इस श्लोक में बताई है, निर्बल सबल का आहार है। कोई भी अपने से अधिक सबल के प्रहार से अपनी रक्षा नहीं कर सकता और भगवान की इच्छा से निर्बल सबल तथा सर्वाधिक सबल ये तीन कोटियां बनी हुई हैं। यानी कि एक बिल्कुल निर्बल है, उससे ज्यादा शक्तिमान है और उससे ज्यादा। तो ये भगवान ने ये तीनों कोटियां बनाई हैं। हम अपने कर्मों के अनुसार किसी एक स्वरूप को प्राप्त करते हैं। यदि भाग निर्बल पशु को जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित हैं खा जाता है तो इसमें शोक करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह तो परमेश्वर का नियम है। यद्यपि नियम यह कहता है कि मनुष्य को किसी अन्य जीवन पर जीवन निर्वाह करना होता है, लेकिन सद्भाव का भी नियम है, क्योंकि मनुष्य को शास्त्रों के नियमों का पालन करना होता है। अन्य पशुओं द्वारा ऐसे संभव नहीं होता। मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसे भगवान को अर्पित किए बिना कोई भी वस्तु नहीं खानी चाहिए। भगवान अपने भक्तों से शाक फल पत्ती तथा अन्न के बने विविध व्यंजन स्वीकार करते हैं, अतः फल पत्ती तथा दूध के विभिन्न पकवान भगवान को अर्पित किए जा सकते हैं और जब भगवान उन्हें पा लेते हैं तो भक्त इस प्रसाद को खा सकते हैं, जिससे जीवन संघर्ष के सारे क्लेश क्रमशः दूर हो जाते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता 9.26 में हुई है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयस्यते तदहम भक्त प्रहतम अश्नामी प्रियतात्मनः। जो लोग पशु भक्षी हैं वे भी सीधे भगवान को भोज्य पदार्थ न अर्पित कर धार्मिक अनुष्ठानों की कतिपय दशाओं में भगवान के किसी दूत को अर्पित कर सकते हैं। शास्त्रों का आदेश मांस भक्षकों को प्रोत्साहन करना नहीं, अपितु नियमों के द्वारा उन पर प्रतिबंब लगाना है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी एक नियम बता रहे हैं कि भले ही निर्बल सबल का आहार होता है, यानी कि जिसके पास ज्यादा शक्ति नहीं होती है तो शक्तिमान उसे खाता है, लेकिन मनुष्य के ऊपर नियम होता है, है ना। मनुष्य को किसी भी अन्य जीव पर जीवन निर्वाह करना पड़ता है, क्योंकि शास्त्र ने कहा जीवस्य जीवो जीवस्य जीवनम। लेकिन सद्भाव का भी नियम है, शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य को कभी भी वह वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए जो भगवान को अर्पित ना की जाए, और भगवान को वही वस्तु अर्पित की जाती है जो कि भगवान ने स्वयं कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तो भगवान ने कहीं नहीं कहा अंडम चिकनम मटनम बीफम, कुछ नहीं कहा, तो फिर हम वो कैसे खा सकते हैं। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जीव अपने से अधिक सबल अन्य जीव का भक्ष्य होता है, किसी को किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन निर्वाह के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्वत्र ही जीव है और कहीं पर भी भोजन के अभाव में एक भी जीव भूखों नहीं मरता। महाराज युधिष्ठिर को नारद उपदेश देते हैं कि भोजन के अभाव में अपने चाचाओं के कष्ट भोगने की चिंता ना करें, क्योंकि वे जंगलों में उपलब्ध शाकों को भगवान के प्रसाद के रूप में प्राप्त करके जीवित रह सकते हैं और इस तरह मोक्ष मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। शिला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बताते हैं, कोई कोई लोग को हमेशा चिंता रहती है हम खाएंगे क्या, किधर जाते वक्त हमेशा सोचते खाएंगे क्या। अरे खाते हैं जीने के लिए, और भगवान ने हर जगह पर कोई ना कोई वस्तु बना के रखी है तुम्हारे लिए, तुम्हें खाने के लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी चींटी को भी जब उसके आहार मिल जाता है, जब इतने बड़े हाथी को मनोटनो आहार मिल जाता है, तो जीव तुम कितना खाओगे, दो रोटी के लिए इतना परेशान होते हो। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि खाने के लिए किसी को भी परेशान नहीं होना चाहिए। आप संसार के किसी भी कोने में, चाहे जंगल में भी चले जाओगे, आपको अवश्य कुछ न कुछ खाने के लिए मिल जाएगा, तो उसके लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जीवन बर्बाद हो रहा है, काल कर्म और गुणों के अधीन यह शरीर है जो किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है, तो इसकी फिक्र करो। आगे कहते हैं, सबल द्वारा दुर्बल का शोषण प्राकृतिक अस्तित्व का नियम है। जीवों के विभिन्न साम्राज्यों में निर्बल को निगल जाने का सदैव प्रयास होता है, रहता है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी एक नियम बता रहे हैं कि जो निर्बल होता है, शक्तिमान व्यक्ति हमेशा उसका शोषण करते रहते हैं, उसको सदैव निगलने का प्रयास करते रहते हैं। भौतिक परिस्थितियों में किसी कृत्रिम साधन से इस प्रवृत्ति को रोक जाने कि कोई संभावना नहीं है। इसे मनुष्य के आध्यात्मिक भाव को आध्यात्मिक नियमों के अभ्यास द्वारा जगाकर ही रोका जा सकता है, किंतु आध्यात्मिक विधि विधान एक ओर मनुष्य को निर्बल पशुओं का वध करने तथा दूसरी ओर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की शिक्षा नहीं देता। अब शिला प्रभुपाद जी यहाँ पर जो हो रहा है उसके विषय में बता रहे हैं कि आध्यात्मिक मनुष्य को आध्यात्मिक नियम का पालन करना चाहिए, और आध्यात्मिक नियमों को जगा कर ही इस अधर्म को रोका जा सकता है। लेकिन आध्यात्मिक विधि विधान एक तरफ से आपको ये नहीं कह सकता कि भाई आप पशुओं का वध करके खा सकते हो, और दूसरी तरफ से बोले कि शांतिपूर्ण अस्तित्व प्राप्त हो जाएगा। यदि मनुष्य पशुओं को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की अनुमति नहीं देता, तो फिर वह किस तरह से मानव समाज में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की उम्मीद कर सकता है। अतएव अंधे नेताओं को चाहिए कि वे परम पुरुष को जाने और तब ईश्वर के राज्य को लागू करने का प्रयास करें। विश्व के जिन समुदाय के मन में ईश्वर चेतना को जगाए बिना ईश्वर राज्य का राम राज्य या राम राज्य संभव नहीं है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं आजकल के पॉलिटिक्स होते हैं, नेता होते हैं, वो पशुओं को तो मारते हैं, उनके साथ हिंसा करते हैं, और सोचते हैं कि हम शांतिपूर्वक ना यहाँ संसार में रहेंगे। क्या ऐसा संभव है? जब आप किसी जीव को शांति से रहने नहीं देते, तो आप कैसे सोच सकते हो कि प्रकृति आपको शांति से रहने देगी? तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ईश्वर चेतना जब तक मन में जागरूक नहीं होती है, तब तक राम राज्य असंभव है। आगे कहते हैं श्लोक नंबर 48 में, तदिदं भगवान राजन एक आत्मात्मनाम स्वदृक् अंतरोनंतरो भाति पश्यतु माययोरुधा। तदिदं
भगवान राजन एक आत्मात्मनाम स्वदेक अंतरो नंतरो भाति पश्यतम माययोरुधा।
अब क्योंकि सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवान की प्रबल नियंत्रण में होता है, तो नारद मुनि कहते हैं तदिदम भगवान राजन एक आत्मात्मनात्मना, कि अब तुम्हें एकमात्र क्या करना चाहिए, उसी परमेश्वर। तदिदम भगवान राजन, हे राजन, एक जो एक भगवान है, जो अपने जिसके जैसा और कोई नहीं है, उनके जैसा मतलब वो अद्वितीय है, और अपनी शक्तियों के साथ इस संसार में जी अंतरो नंतर भाती जीव के हृदय में और बाहर भी प्रकट होते हैं। पश्यतम माययोरुधा, तुम बस उन्हीं भगवान को देखो, तुम्हें सिर्फ उन्हीं को देखना चाहिए जो अद्वितीय हैं, उनके समान और कोई भी दूसरा नहीं है, और अपनी समस्त शक्तियों के द्वारा इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। मतलब अब नारद मुनि उनका आकर्षण कृष्ण की ओर कर रहे हैं कि तुम यहाँ भौतिक वस्तुओं और भौतिक व्यक्तियों की चिंता कर रहे हो कि उनका क्या होगा, उनका क्या होगा। भगवान के बारे में याद करो, भगवान इस संसार में आए हुए हैं, और वो जो साक्षात भगवान है वो इस संसार में प्रकट हुए हैं, तुम्हें उसके बारे में विचार करना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज का पूरा ध्यान धृतराष्ट्र और गांधारी से हटाकर वो कृष्ण के चरणों की ओर लगा रहे हैं। अनुवाद देखिए, नारद मुनि कहते हैं अतएव हे राजन, तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए जो अद्वितीय है और जो विभिन्न शक्तियों से साक्षात प्रकट होते हैं और भीतर तथा बाहर दोनों में है। श्रील प्रभुपाद की इच्छा है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब जैसे श्री नारद मुनि कहते हैं तदिदम भगवान राजन एक आत्मात्मनाम स्वदृक, वो अद्वितीय हैं, वो एक हैं, उनके जैसा और कोई भी नहीं है, और आत्मा भले ही गुणों में भगवान के जैसा हो, परंतु क्वालिटीज ऐसी हैं, परंतु क्वांटिटीज बहुत विभिन्न है, क्योंकि आत्मा जो है वो अणु है और भगवान विभू है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान अद्वितीय हैं, किंतु वे अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा स्वयं प्रकट होते हैं। स्वदृक, आत्मानम स्वदृक, अपनी शक्तियों द्वारा प्रकट होते हैं, क्योंकि वे स्वभाव से आनंदमय हैं। जीव भी उनकी तटस्थ शक्ति के प्राकट्य हैं। गुणों में भगवान से एक हैं, और भगवान की बहिरंगा शक्ति तथा अंतरंगा शक्ति के भीतर तथा बाहर दोनों ही जगह असंख्य जीव हैं। भगवान की तीन शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। जीव भगवान की तटस्थ शक्ति है। जीव अंतरंगा शक्ति में भी बहुत सारे जीव हैं, और बहिरंगा शक्ति इस भौतिक प्रकृति में भी बहुत सारे जीव हैं। और यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं चूंकि आध्यात्मिक जगत भगवान की अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, अतएव जो जीव उस अंतरंगा शक्ति के भीतर है, वे बहिरंगा शक्ति से दूषित हुए बिना गुण में भगवान के समान है। अब जो इस संसार में है वो तो माया के द्वारा दूषित हो जाते हैं, परंतु और माया के द्वारा दूषित हो जाते हैं तो क्या होता है, वो अपने आप को देह समझने लगते हैं, परंतु जो अंतरंगा शक्ति में है वो बहिरंगा शक्ति से दूषित नहीं होते हैं, और वो अपने आप को देह नहीं समझते हैं, आत्मा समझते हैं, तो गुणों में भगवान से एक होते हैं। मतलब वो भी अनित्य होते हैं, शाश्वत होते हैं, क्योंकि वो आत्मा समझते हैं, तो फिर भौतिक प्रकृति के जो भी ये आच्छादन है, माया है, उनको आक्रमण नहीं कर सकती। जीव भगवान से गुणों में एक होकर भी जगत के कलमश के कारण विकृत रूप में दिखता है, अतएव उसे जगत में तथाकथित सुख तथा दुख का अनुभव होता है। ऐसे अनुभव क्षणिक होते हैं और उनसे आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जीव भगवान का अंश है और उसको इन सुख दुख से कोई लेना देना नहीं होता है, परंतु क्योंकि विकृत स्वरूप होता है इस संसार में उसका, वो देहात्म बुद्धि में आ जाता है, तो उसे दुख और सुख का अनुभव होता है। परंतु श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं
आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वास्तव में जीव आत्मा है, तो ऐसे क्षणिक सुख तथा दुख की अनुभूति अपने भगवान के ही समतुल्य गुण की विस्तृति के कारण होती है, है ना? क्यों होता है ये सब दुख और सुख हमें रियलाइज? क्योंकि हम भगवान को भूल जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, अज्ञानता हम पर हावी हो जाती है और अपने आप को शरीर समझने लगते हैं, और शरीर से रिलेटेड जो भी सुख और दुख होता है वो हमें लगता है कि हमें हो रहा है। वास्तव में ये केवल अज्ञान है, इसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु भगवान से भीतर तथा बाहर एक नियमित धारा प्रवाहित होती रहती है। अंतर हमारे जीव जब होता है तो हृदय में भगवान बैठे होते हैं, अंतर से भी और बाहर से भी नियमित धारा प्रवाहित होती है, जिससे जीव अपनी पतित अवस्था को सुधार सकता है। अगर जीव चाहे, इच्छा करे, तो वो अपनी पतित अवस्था मतलब माया से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। भीतर से भी अंतर्यामी परमात्मा के रूप में इच्छा करने वाले जीव को सुधारते हैं। अब देखो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा इच्छा करने वाले। जब तक जीव स्वयं इच्छा नहीं करता, तब तक हृदय में बैठा हुआ परमात्मा आपकी सहायता भी नहीं करता। परमात्मा हृदय के अंदर बैठा हुआ है, वो आपको जिसकी वो इच्छा करता है। यदि जीव आत्मा वास्तव में सुधरना चाहता है और अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहता है, तो अंतर्यामी परमात्मा के रूप में भगवान अवश्य उसकी सहायता करते हैं, और वे गुरु तथा शास्त्रों के रूप में अपनी अभिव्यक्ति द्वारा सुधारते रहते हैं। यानी बाहर से गुरु और शास्त्रों के द्वारा, और अंदर से परमात्मा के रूप में वो जीव की सहायता करते रहते हैं। मनुष्य को भगवान की ओर ही दृष्टि लगानी चाहिए। इसी श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं जीव को सदैव भगवान की ओर दृष्टि लगानी चाहिए। और नारद मुनि ने भी युधिष्ठिर महाराज को कहा पश्यतम मायायोरुधा, कि अभी तुम्हें उसी भगवान की ओर देखना चाहिए। भौतिक संसार में क्या घटित हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसके लिए ज्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है उसे। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं उसे तथाकथित सुख और दुख प्रकट होने पर विचलित नहीं होना चाहिए, अपितु पतित आत्माओं को सुधार कर भगवान की सहायता उनके बाहरी कार्यों में करनी चाहिए। बल्कि भगवान की सहायता, ये भगवान की सहायता है, क्योंकि ये भगवान का मिशन है कि वो भगवान समस्त पतित आत्माओं को उनके वास्तविक लक्ष्य की ओर ले जाना चाहते हैं। भगवान किसी को दुखी देखना नहीं चाहते, भगवान बहुत सुहृद हैं और सबका कल्याण करना चाहते हैं। तो जो जीव भगवान की सहायता करते हैं पतित आत्माओं को भगवत ज्ञान देकर, तो वही भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें हमेशा पतित आत्माओं को सुधार कर भगवान की सहायता करनी चाहिए और उन्हें बाहरी कार्यों का उनके बाहरी कार्यों में करनी चाहिए। गुरु साधु और शास्त्र बनकर शास्त्रों के द्वारा और गुरुओं के आदेशों के द्वारा समस्त जीव आत्माओं को भगवान की ओर आकर्षित करवाना चाहिए, और ताकि वो इन भौतिक सुख दुखों से बाहर निकलकर अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। उन्हीं के आदेश से मनुष्य को गुरु बनकर उनको सहयोग देना चाहिए। किसी को अपने निजी लाभ के लिए, आजीविका कमाने के लिए अथवा धंधे के साधन के लिए गुरु नहीं बनना चाहिए। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी गुरु बनने की योग्यता बता रहे हैं कि हृदय में एक ही इच्छा होनी चाहिए कि मैं जीवों का कल्याण करके भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त कोई भौतिक लाभ के लिए या फिर धन अर्जित करने के लिए गुरु नहीं बनना चाहिए। ऐसे प्रामाणिक गुरु जो भगवान को सहयोग देने के लिए भगवान की ओर दृष्टि लगाते हैं, वे गुणात्मक रूप से भगवान से एकाकार होते हैं। भुलक्कड़ लोग केवल विकृत प्रतिबिंब मात्र होते हैं। यहाँ पर संसार में जितने भी भुलक्कड़ लोग हैं अपनी वास्तविकता भूल गए हैं, वो प्रतिबिंब ये जानते हैं कि भौतिक जगत जो है वो आध्यात्मिक जगत का केवल प्रतिबिंब है। अतएव युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि उपदेश देते हैं कि वे तथाकथित सुख और दुख के मामले में तनिक भी विचलित ना हो, अपितु भगवान के उस संदेश को पूरा करने के लिए भगवान की ओर देखें जिसके लिए भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। यही उसका मूल कर्तव्य है। श्रील प्रभुपाद जी कितना सुंदर बता रहे हैं कि
हमें इस संसार में आकर ये भौतिक जगत से रिलेटेड जितने भी दुख हैं, सुख हैं, उनके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। जो हमारे कर्मों के अनुसार हमें प्राप्त होने वाला है वो होगा, और जो नहीं होने वाला है उसके लिए कितना भी प्रयत्न करें वो हमें नहीं मिलेगा। और जो दुख हमें मिलना है वो तो मिलेगा, चाहे हम रोए पीटे मर जाए, लेकिन वो दुख तो मिलेगा ही। तो उसके लिए दुखी होकर अपना वास्तविक लक्ष्य जो है वो क्या है, भगवान को प्रसन्न करना। तो भगवान के भगवान जिस कार्य के लिए अवतार लेते हैं, परित्राण है साधुना विनाशाय च दुष्कृतम, तो भगवान को भगवान की इस कार्य में उनकी सहायता करनी चाहिए। समस्त जीवों को भगवान के विषय में बताना चाहिए, भगवान के शब्दों को, भगवान के पवित्र नाम की महिमा, भगवान के श्रीमद् भागवतम में जो भगवान की लीलाएं उनके विषय में बताकर भगवान की भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। और यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं वास्तव में हमारा जीव का वास्तविक कर्तव्य यही है कि वो ये न के न प्रकारे भगवान को प्रसन्न करे, ना कि भौतिक ये छोटे छोटे झंझटों में अपना टाइम वेस्ट करें और उन्हीं के लिए दुखी सुखी होकर सदैव विचलित रहता रहे। ये उसके जीवन का लाभ नहीं है, ये जीवन का कर्तव्य नहीं है, क्योंकि ये जो दुख सुख है वो भगवान भगवत गीता में 2.40 में बताते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदाह अगमा पाइनो अनित्याह तांस्थिति क्षस्व भारत। ये सुख और दुख तो मात्र केवल इस शरीर के बोध के कारण है, क्योंकि हम अपने आप को देह समझते हैं तभी सारे सुख और दुख इस देह से रिलेटेड है। तो भगवान कहते हैं आगमा पाइनो अनित्याह, ये आते जाएंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, अनित्य है, कुछ शाश्वत नहीं है। कभी सुख आएगा फिर दुख आएगा, सुख आएगा, जिस तरह सर्दी आती फिर गर्मी आती फिर सर्दी आती, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो क्या करना चाहिए, तांस्थितिक शस्व, उसे बर्दाश्त करना चाहिए, उसमें टेंशन ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, फिक्र नहीं करनी चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए, भगवान के ऊपर दृष्टि रखनी चाहिए कि वो बहुत कृपालु हैं, वो अवश्य हमें सहायता करेंगे और हमें सुख दुख के झंझट से निकालकर अपने चरणों में अवश्य आश्रय प्रदान करेंगे। आगे नारद मुनि कहते हैं सोयम मध्य महाराज भगवान भूत भावन काल रूपो वतीर्णो स्याम अभावा यसुरद्विषाम। सोयम मध्य महाराज भगवान भूत भावन काल रूपो वतीर्णो स्याम अभावाय सुरत्विषाम। सोयम मध्य, यहाँ कहते हैं वही परमेश्वर, सोयम यानी वह भगवान, इस वह भगवान इस दया अध्य इस समय, हे महाराज वही भगवान इस समय संसार में आए हैं, कौन सी वाली, भूत भावना, जो समस्त जीवों के सृजन करते हैं और समस्त जीवों का पालन करते हैं और सारी वस्तुओं को जो भी जीवों की आवश्यक वस्तुएं हैं वो उन्हें प्रदान करते हैं, समस्त जीवों के पालक वही भगवान इस संसार में आए हैं। और काल रूपो वतीर्णो स्याम, काल रूपो सर्वभक्षी काल के वेश में और इस संसार में अवतरित हुए हैं विश्व पर, स्याम मतलब अस्याम मतलब इस संसार में अवतरित हुए हैं, अभावाय सुरद्विषाम, अभावाय मतलब वो क्या करेंगे, निकाल फेंकेंगे, बाहर निकाल देंगे, उनका सर्वनाश कर देंगे, किसका, सुरद्विषाम जो दुष्ट हैं संसार में, उन जो भगवान जो लोग भगवान की इच्छा के विरुद्ध हैं उनका सर्वनाश करने के लिए वही भगवान जो समस्त जीवों का, वैसे तो भगवान का स्वभाव क्या है, सबका पालन करना, सबका संरक्षण करना। वास्तव में भगवान बहुत सुहृद हैं, सबसे प्रेम करते हैं, किसी का अहित कर ही नहीं सकते, लेकिन अब वही भगवान इस संसार में काल रूपो वतीर्णो सर्वभक्षी काल के स्वरूप में आए हैं, क्योंकि जो दुष्ट हो गए हैं, बहुत सारे संसार में दुष्ट जमा हो गए हैं और उनका कल्याण इसी में है कि अब वो मर जाए, क्योंकि अगर उनकी मृत्यु नहीं होगी तो जितना समय वो अधिक इस संसार में रहेंगे उतना ही अधिक अपराध करेंगे और जितना अधिक अपराध करेंगे उतने ही अधिक समय तक उन्हें नरक भोगने पड़ेंगे, बारंबार जन्म लेना पड़ेगा, बारंबार अत्याचार सहना पड़ेगा, क्योंकि अपने कर्मों का हिसाब तो उन्हें देना पड़ेगा। इसे भगवान जिसके साथ जो भी करते हैं, भूत भावना, भगवान सबके पालन करता है, वो सबके हितैषी हैं। जिनका वो वध करेंगे, जिनका सर्वनाश करेंगे, अभाव या जिनको यहाँ संसार में जिनको मारने के लिए या संहार करने के लिए भगवान आते हैं, वास्तव में उसी में उनका कल्याण होता है। इसलिए अब वही भगवान जब इस संसार में आए हैं तो पश्यतमायुर्था, तो तुम्हें उसी के उन्हीं को देखना चाहिए, उन्हीं की ओर दृष्टि लगानी चाहिए। अनुवाद, वे ही भगवान श्री कृष्ण सर्वभक्षी काल के वेश में काल रूप में अब संसार में द्वेषी लोगों का सर्वनाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, द्वेषी तथा आज्ञा पालक। चूंकि परमेश्वर एक हैं और वे सभी जीवों के पिता हैं, अतएव द्वेषी लोगों को भी उन्हीं की द्वेषी लोग जो हैं वो भी उन्हीं की संतान हैं, लेकिन वे असुर कहलाते हैं। परमात्मा के आज्ञाकारी जीव देवता कहलाते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन का भौतिक बोध कलुषित नहीं बनाता। यहाँ संसार में श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, इस भौतिक जगत में दो कोटियां होती हैं जीव की, एक सुर है और असुर है। तो इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 16 में बहुत ही सुंदर रीति से समझाते हैं सुर और असुर लोगों के विषय में। जो भगवान के आज्ञाकारी होते हैं, भगवान के आदेश अनुसार कार्य करते हैं, वो सुर यानी देवता कहलाते हैं। और श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, असुर लोग न केवल भगवान के अस्तित्व को इनकार करके करते हैं, द्वेष करते हैं, अपितु वे अन्य समस्त जीवों से भी द्वेष रखते हैं। जगत में असुरों के प्राधान्य को कभी कभी भगवान उनकी पूरी तरह विनष्ट करके ठीक करते हैं और पांडव जैसे देवताओं का राज्य स्थापित करते हैं। संसार में जब असुर भर जाते हैं तो भगवान स्वयं अवतरित होते हैं विनाशायत दुष्कृताम, उन असुरों का विनाश करने के लिए और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करते हैं देवताओं के यानी देवताओं के स्वभाव वाले जैसे पांडव जैसे लोग होते हैं, उनको राज्य प्रदान करते हैं। आगे श्री प्रभुपाद जी बोलते, छद्म रूप में उनकी काल नाम की उपाधि महत्वपूर्ण है। यहाँ छद्म रूप में यानी कि वैसे तो वास्तव में वो क्या है, भूतभृता सबका सुहृद है, लेकिन इस भौतिक जगत में जब दुष्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उन्हें काल स्वरूप धारण करना पड़ता है। वे रंच मात्र भी घातक नहीं है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, वास्तव में भगवान कभी भी किसी पर क्रूरता नहीं दिखाते हैं, किसी को संकट नहीं देते, कष्ट नहीं देते, अपितु वे सच्चिदानंद रूप हैं, सदैव सबका कल्याण करते हैं। जो भक्त हैं उनके सामने उनका वास्तविक रूप प्रकट होता है, किंतु जो अभक्त हैं उनके लिए वे काल रूप में प्रकट होते हैं जो उनका कारण रूप है। आगे कहते हैं, भगवान का यह कारण रूप असुरों को तनिक भी सुहावना नहीं लगता, अतएव वे अपने को सुरक्षित अनुभव करने के लिए यह समझकर कि उनका विनाश नहीं होगा, भगवान को निराकार मानते हैं। अब जो भगवान के भक्त होते हैं, जो देवता होते हैं, वो तो भगवान से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, उनके लिए भगवान सदैव सच्चिदानंदमय हैं, लेकिन जो असुर होते हैं वो भगवान, क्योंकि भगवान काल रूप में उनके सामने प्रकट होते हैं, तो भगवान को पसंद नहीं करते, भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, इसलिए भगवान वो ऐसे बोल देते हैं कि भगवान है ही नहीं। वास्तव में श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भगवान से प्रेम नहीं करते वही भगवान को निराकार मानते हैं, लेकिन जो प्रेम करते हैं वो भगवान के अस्तित्व को मानते हैं और भगवान की शरणागति को स्वीकार करते हैं। आगे नारद मुनि कहते हैं, निष्पादितं देवकृत्यं अवशेषं प्रतीक्षते तावत् यूयमवेक्षेत्वं भवेद्यावदीश्वर। निष्पादितं देवकृत्यं अवशेषं प्रतीक्षते
तावत् यूयम् अवेक्षेत्वम् तावत् यूयम् अवेक्षत्वम् भवेत् यावदिहेश्वरम् निष्पादितम् देवकृत्यम्। उन्होंने जितने देवताओं की ओर से जो कुछ होना था देवकृत्यम वो उन्होंने संपादन कर दिया है, सारा काम निष्पादितम, सारा भगवान जिस कार्य के लिए आए थे देवताओं का कल्याण करने के लिए, असुरों का संहार करने के लिए, वो तकरीबन उन्होंने सारा काम कर लिया है। और आगे कहते हैं अवशेषम प्रतीक्षते, और अभी थोड़ा सा काम बाकी रह रहा है तो वो उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो भी कंप्लीट हो जाए। मतलब बाकी ज्यादातर 100% में से 99% काम हो गया, 1% रह गया, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो कहते हैं तावत् यूयम् अवेक्षेदम्, उस समय तक जब तक उनका बाकी का काम कंप्लीट नहीं होता है, तावत् यूयम् अवेक्षेदम्, तुम सारे पांडव अवेक्षेदम मतलब देखो और प्रतीक्षा करो, भवेत् यावदिहेश्वरम् कि जब तक इस संसार में ईश्वर का बाकी का काम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक तुम प्रतीक्षा करो। यहाँ पर ये बात समझनी चाहिए कि भगवान तो अपना सारा का सारा काम संपन्न करके चले गए, फिर नारद मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने ज्यादातर अपना काम संपन्न कर दिया है, बाकी थोड़ा काम रह गया है, तो तुम पांडव जो है वो उस कार्य के खत्म होने तक यहाँ पर मतलब आप इंतजार कर सकते हो। तो वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नारद मुनि जानते हैं कि अभी यदि मैंने युधिष्ठिर महाराज को ये बता दिया कि कृष्ण इस धराधाम पे नहीं है तो अभी इनकी मृत्यु हो जाएगी। एक तो पहले से दुखी हैं धृतराष्ट्र और गांधारी के जाने से, और साथ में उनको ये खबर पड़ गई कि कृष्ण अब संसार में नहीं है, तब तो इनके प्राणों की सुरक्षा करना असंभव हो जाएगा। इसे जिस तरह विदुर जी ने नहीं बताया उसी तरह नारद मुनि भी नहीं बता रहे हैं, और उनको कह रहे हैं अभी प्रतीक्षा करो, अभी वो हैं, थोड़ा काम अभी बाकी करेंगे फिर चले जाएंगे, लेकिन वही भगवान है भूतवरण, वो इस संसार में आए, तुम उनके बारे में सोचो ना, तुम ये धृतराष्ट्र और गांधारी के विषय में काम काम में परेशान हो रहे हो। अनुवाद, भगवान ने देवताओं की सहायता करने का अपना कर्तव्य पहले ही पूरा कर दिया है, और जो शेष है उसके लिए वे प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम सभी पांडव तब तक प्रतीक्षा कर सकते हो जब तक भगवान इस धराधाम पर हैं। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान अपने धाम यानी कृष्ण लोक से जो वैकुंठ लोक है इस धराधाम के देव शासकों की सहायता करने के लिए तब तक अवतरित होते हैं जब जब वे उन असुरों द्वारा अत्यधिक सताए जाते हैं, जो न केवल भगवान से अपितु उनके भक्तों से भी द्वेष करते हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, बद्ध जीव अपनी रुचि से भौतिक जगत के साधनों पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से अपनी प्रबल इच्छा द्वारा प्रेरित होकर भौतिक संगति करते हैं और वे नकली स्वामी बन बैठते हैं। वास्तव में इस संसार में कोई स्वामी नहीं है, सब आधीन है, लेकिन वो इस भौतिक जगत पर जो प्रभुत्व जताना चाहते हैं वो नकली स्वामी बनते हैं। प्रत्येक व्यक्ति नकली ईश्वर बनना चाहता है, हर कोई चाहता है कि मैं ईश्वर बनूं, ये वस्तुएं मैं भोक्ता बनूं और ये सब भोग्य मेरी बने और मैं उनसे आनंद उठाऊं। ऐसे नकली ईश्वर में प्रबल होड़ लगती है और ऐसे प्रतियोगी सामान्यता असुर कहलाते हैं। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो वास्तव में भोक्ता अपने आप को बनाना चाहते हैं वो असुर हैं। जब संसार में असुरों की संख्या बढ़ जाती है तो यह जगत भगवत भक्तों के लिए नरक बन जाता है। हर जगह पर असुर होंगे तो भगवत भक्तों के लिए जीना कठिन हो जाएगा, क्योंकि वो भक्ति करने में उनके लिए सदैव बाधा उत्पन्न करेंगे। तो असुरों की वृद्धि के कारण जनता जो सामान्य रूप से भगवान की भक्ति करती है और उच्च लोकों के देवताओं समेत भगवान के शुद्ध भक्त भगवान से उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं, जब बहुत ज्यादा असुर संसार में हो जाते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान इन असुरों से हमारी रक्षा करो, तो भगवान या स्वयं अपने दाम से नीचे आते हैं या अपने भक्तों में से किसी को मानव या पशु समाज की गिरी दशा सुधारने के लिए नियुक्त करते हैं। तो भगवान उस समय एक काम करते हैं, दो काम कर सकते हैं, या तो स्वयं आए या किसी और को, अपने भक्तों को और इस पशु समाज को की जो गिरी हुई दशा है उसको सुधारने के लिए संसार में भेजते हैं। ऐसी अशांति केवल मानव समाज में ही नहीं अपितु पशुओं पक्षियों या अन्य जीवों के बीच में भी, जिनमें उच्च लोक के देवता सम्मिलित हैं, मचती रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने तब कंस जरासिंह शिशुपाल जैसे असुरों का वध करने के लिए स्वयं अवतार लिया। महाराज युधिष्ठिर के शासन काल में लगभग इन सारे असुरों का वध भगवान ने कर लिया था। यहाँ पर बता देना निष्पादितं देव कृत्यम, अभी देवताओं को जो जो तंग कर रहे थे या जो प्रॉब्लम कर रहे थे संसार में, कंस जरासिंह शिशुपाल ये सब तो मारे गए थे, तो आगे अब वे अपनी ही वंश यदुवंश के पूर्ण विनाश की प्रतीक्षा में थे। अब वो क्या कर रहे थे, अवशेषम प्रतीक्षते, क्योंकि यदुवंश इतना बहुत ज्यादा संपन्न हो गया था, तो फिर वो भी अब क्योंकि जो संपन्न हो जाते हैं तो ऐसा संभव होता है कि वो नीचे जो निर्बल लोग होते हैं उनको सताएंगे, और फिर उनका सफाया होना संभव नहीं था अकेले, तो फिर भगवान उन सबको खत्म करके उसके बाद जाना था भगवान को। इसे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं अब वे अपने ही वंश यानी यदुवंश के पूर्ण अंश विनाश के प्रतीक्षा में थे, जो इस संसार में उनकी अपनी इच्छा से ही प्रकट हुआ था। वे अपने नित्य धाम जाने से पूर्व इस वंश को समेट लेना चाहते थे। नारद ने विदुर की तरह यदुवंश के आसन विनाश की बात प्रकट नहीं होने दी, किंतु अप्रत्यक्ष उन्होंने राजा तथा उनके भाइयों से संकेत कर दिया कि वे इस घटना के घटने तथा भगवान के प्रयाण करने तक प्रतीक्षा करें। तो अप्रत्यक्ष रूप से संकेत तो कर दिया कि अब भगवान ने ज्यादा काम कर लिए, थोड़ा काम रह गया वो करेंगे और चले जाएंगे, तो तुम उसके बारे में फिक्र करो, भगवान की ओर देखो, धृतराष्ट्र को और गांधारी को जाने दो, उनको भगवान खुद ही संभालेंगे। मतलब नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को यह ज्ञान दिया कि हे राजन, ये सारा जगत ईश्वर स्वरूप है, ईश्वर के विधान से चल रहा है, आप चिंता मत कीजिए, और वही प्रभु जो इस जगत के ईश्वर हैं, उन्होंने अवतार लिया है और वो अपना सारा काम कर चुके हैं, थोड़ा सा काम बाकी है तो उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आप जब तक इस पृथ्वी पर हैं आप उसी विषय में जानने का प्रयत्न कीजिए, उसी के विषय में जानिए, बाकी जो संसार में सुख और दुख है वो तो आते जाते हैं, जिनके जैसे कर्म है उनको वैसा ही मिलता है, उनके विषय में ज्यादा शोक करने की आवश्यकता नहीं है। इतना कहने के बाद अब नारद मुनि उन्हें धृतराष्ट्र और गांधारी के विषय में बताएंगे, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने पूछा तो यही था ना कि न हम वेद गतिम पित्रोर, भगवान को गतावत अम्बाव हता पुत्राह को गताच तपस्विनी, कि मेरी ताऊश्री मेरे ताश्री कहाँ गए हैं, मेरी ताईश्री कहाँ गई हैं, उनके विषय में हमें बताइए, वो कितने ज्यादा दुखी थे, अभी हमें छोड़कर क्यों गए। तो इतना सारा भगवान के विषय में बताकर यानी उनका मोह पूरा खत्म कर दिया कि इस भौतिक जगत में जो कुछ भी होता है वो सब ईश्वर की इच्छा से होता है, अब ईश्वर की चिंता करनी चाहिए, ईश्वर का चिंतन करना चाहिए, भौतिक वस्तुओं की चिंता नहीं करनी चाहिए। इतना बताने के बाद अब वो धृतराष्ट्र और गांधारी के विषय में बताएंगे, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। हरे कृष्ण।